ओम शांति। इस योग तपस्या मौन भक्ति में हम आदरणीय ब्रह्म कुमार राजयोगी राजू भाई का स्वागत करते हैं। स्वागत है। बहुत ही सुंदर विषय है, या मैं कहूं कि अनुभवों की लेन देन है, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। कैसे योग के प्रयोग, कैसे एक्सपेरिमेंट्स जो हम योग के विषय में करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, वो कैसे हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ में हमें मदद रूप बनते हैं, इस विषय को लेकर के आप हमें लाभान्वित करेंगे। और हमारा जो ग्रोथ का ग्राफ है उसे और बढ़ाने में मदद करेंगे। आपका अलौकिक जीवन बहुत वर्षों का है, जितनी आपकी आयु है उससे केवल 4 वर्ष कम। 4 वर्ष की आयु में आपको ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय मिला, और वंडरफुल है। जनरली लोगों को परिचय मिलता है तो कोई प्रदर्शनी से, कोई मेले से, कोई सेंटर पे ले जाता है, कहीं कुछ देखते हैं, कहीं कुछ पैम्फलेट मिल जाता है, या ढूंढते ढूंढते कहीं चले गए तो मिल जाता है। लेकिन आपको जो बाबा का परिचय मिला, आप सोचो, वंडरफुल बात है। आप उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे गांव से हैं, वहां पर उन दिनों में 1960 में स्वयं हमारी मातेश्वरी माँ जगदम्बा 35 बहनों के साथ, जो आज हमारी दादियां हैं, 35 दादियों के साथ 1960 में उनके घर में उन्होंने वहां ईश्वरीय ज्ञान देना प्रारंभ किया, गीता पाठशाला का प्रारंभ किया। तब आपकी आयु 4 वर्ष थी, तब आपको इस ज्ञान का परिचय हुआ। एक अलौकिक भाग्य है ये भी कि कैसे किसी को बाबा का परिचय मिलता है। और माता पिता को पहले ही आध्यात्म में रुचि थी, आपके यहाँ इस तरह से उस इलाके में बाबा के ज्ञान का प्रचार होने लगा, लोग जुड़ने लगे, और फिर स्कूल की शिक्षा कंप्लीट करके 1971 में आप मधुबन आए। बड़ी दीदी, मम्मा, बड़ी दादी, सबके अंग संग रहे। वो कहते हैं मैं दादियों की गोद में पला हूँ, क्योंकि बहुत छोटेपन से आ गए थे। और फिर 71 में आए, और फिर 72 में दादियों के इशारे पर, आपने देखा होगा जब कोई भी यहाँ भाई आते हैं या बहनें आती हैं, हम लोग यहाँ होते हैं तो बिना बातचीत किए आप देखेंगे कुछ काम होते हैं। तो ये बाबा ने सिखाया है कि जल्दी से कैच करना, बुद्धि को दिव्य बनाया है। तो आपको बाबा की दिव्य बुद्धि का वरदान है। जब आप 71 में यहाँ आए तो दादियों के, दीदी के इशारे से ही आपने उस इशारे को कैच किया, और आप 72 में आपने अपना जीवन इस ईश्वरी सेवा में समर्पित कर दिया। यूं तो आप हिंदी भाषी हैं, और हमारी दादियां, बाबा, मम्मा सब सिंधी भाषी, तो आपको सिंधी भाषा यूं नहीं आती थी। लेकिन कमलमणि दादी, बड़ी दादी, दीदी आदि के संग में रहते रहते, उन दादी, कमलमणि दादी, मैं समझती हूँ, मैंने ये बात सुनी हुई है, कमलमणि दादी पढ़ती थी और आप लिखते थे, और करते 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 आप सिंधी से हिंदी में ट्रांसलेशन करके जहां जहां सेंटर्स पर मुरली या अन्य कोई बाबा के महावाक्य जाने होते थे तो आप भेजते थे, और इस तरह से आपको सिंधी भाषा आ गई। और आज भी जो आप मुरली में वरदान देखते हैं, स्लोगन देखते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे भाई बहन केवल वरदान पढ़ने से उनकी जीवन परिवर्तित होती है, हैं बाबा के ही महावाक्य, लेकिन उन अव्यक्त महावाक्यों में से चुन करके बात को उस रीति से रखना जो किसी को क्लिक हो जाए, तो वो आप करते हैं। स्लोगन आप मुरलियों में से ही बाबा के ही शब्द हैं, बाबा के ही भाव हैं, चाहे वो सार है, चाहे वो प्रश्न है, चाहे वो अव्यक्त इशारे हैं, चाहे वो पत्र पुष्प है, चाहे हमारी दादियों को पत्र लिखते हैं बच्चे, बाबा के बच्चे, तो उनके जवाब लिखने हो, ऐसे अनेका अनेक कार्य आप अपनी लेखनी से करते हुए आप देश विदेश में इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर सेवा है, दिन भर ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हैं, बुद्धि में ज्ञान रत्नों के सिवाय दूसरी कोई बात ही नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे मिट्टी से ना खेलो तो ज्ञान रत्नों से खेलो, तो आपका नाम ही पड़ गया है। आप हमारी आबू की डिक्शनरी देखेंगे ना तो बहुत सारे राजू भाई हैं, तो आपका नाम है राजू भाई मुरली वाले ना? तो वंडरफुल पहचान है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं योग के और ज्ञान के, जो उन्होंने बल इकट्ठा किया है ज्ञान और योग का और धारणाओं का, इसलिए आप चेहरों से भी देखेंगे ना हमारे इन भाई बहनों के धारणा मूर्त है, उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक है, दिव्यता है। तो आज वो दिव्यता कैसे आई, कैसे अलौकिक बने, कैसे हम उसको बढ़ाएं, तो हम आपसे शेयर करवाना चाहेंगे। आप हमारे साथ शेयर करें कि कैसे हम सब भी योग के प्रयोग करें। आदरणीय भ्राता ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी,
ओम शांति। बाबा ने हम सबको आज की अव्यक्त मुरली में अंतर्मुखी यान दिया। एक अंतरिक्ष यान है, दूसरा अंतर्मुखी यान है। साइंस के द्वारा अंतरिक्ष में जाने का प्रयास करते हैं, अंतरिक्ष यान बनाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं। कितना खर्चा, कितनी मेहनत, आप सब देख रहे हो साइंटिस्ट क्या क्या कर रहे हैं। और बाबा ने हम सब बच्चों को साइलेंस के बल से अंतर्मुखता का यान दिया, और इस अलौकिक यान अथवा विमान से हम सब इस साकार वतन से अव्यक्त वतन में, अव्यक्त वतन से मूल वतन में एक स्थान पर बैठे हुए किसी भी स्थान पर अपने यान से पहुंच सकते हैं। है आप सबके पास कि नहीं है? दिया है बाबा ने सबको, मन और बुद्धि का यान है। जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं, अंदर को देखते हैं, तो ये मन हमारा अच्छा वाहन कहें, यान बन जाता है। और साकार वतन से अव्यक्त वतन और मूल वतन की शक्तियों का जब अनुभव कर लेते हैं, कभी कभी हम विचार करते हैं कि योग बल है क्या चीज जिसका हम प्रयोग करना चाहते हैं। आत्मा तो इन कर्म क्षेत्र पर कर्मेंद्रियों के अधीन होकर के निर्बल बन गई, विकारों के वशीभूत हो गई, उसको बल चाहिए परमात्मा की याद का। और याद का बल ऐसा बल है जिस बल से हम सब अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मन पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। मन जीते जगत जीत, वास्तव में मन को जीतने की बात नहीं है, लेकिन मन हमारा आज्ञाकारी बन जाए, जहां ले जाना चाहे वहां हम सेकंड में पहुंच सकें, उसके लिए आप सभी जरूरी अभ्यास करते होंगे। हम सबको सहज योग बाबा ने सिखाया है और उस सहज योग में मन और बुद्धि जितनी स्वच्छ है, पवित्र है, उतना योग सहज है। अगर मन के अंदर किसी भी प्रकार की अस्वच्छता है, कोई भी प्रकार का अंदर द्वंद है, अंदर अंदर किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते हैं, तो योग में बहुत मेहनत है। भले सहज राजयोग नाम दिया है, लेकिन मन की स्वच्छता, चार बातों की आवश्यकता है सहज योगी जीवन के लिए। एक चाहिए अंदर बाहर की बहुत अच्छी स्वच्छता। जितना साफ और स्वच्छ मन है, तन में जितनी स्वच्छता है, वैसे भी कहते हैं जहां स्वच्छता है वहां प्रभुता है। बाह्य स्वच्छता पर तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अंदर की स्वच्छता, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, कोई भी विकार किए गंदगी न हो, ऐसा स्वच्छ मन, निर्मल मन परमात्मा की याद में सहज टिक सकता है, उसको मेहनत नहीं लगती। तो एक है मन की स्वच्छता और दूसरा है मन का हल्कापन। कोई भी हिसाब किताब का अगर बहुत बोझ है, जवाबदारियों का बोझ है, कई प्रकार की चिंताएं हैं, चिंतन है, भारी है, आप बैठे रहेंगे योग में एक घंटा दो घंटा, भारीपन का ही अनुभव होगा, हल्के नहीं होंगे, उड़ेंगे नहीं। इसलिए बाबा ने हम सबको एक बात कही है कि बच्चे, जो भी तुम्हारी जवाबदारियां हैं, जो तुम्हारी चिंताएं हैं, तुम प्रभु अर्पित कर दो, समर्पित कर दो। बाबा लेने के लिए तैयार है संगम युग पर, हम सब सिर्फ देने के लिए तैयार हो जाए। अगर सच्चे दिल से हम कह दें, बाबा ये सब जवाबदारियां आपकी हैं, जहां जहां मेरापन है वो बोझ है, और जब मेरेपन को हम तेरे में बदल देते हैं, बस बाबा सब तेरा है, बहुत हल्के हो जाते हैं। और जो जितना हल्का है, आप सब यहां अनुभव करना, इस बाबा की तपस्या भूमि में, वरदान भूमि में आप आए हैं, एक बहुत अच्छी योगी जीवन का अनुभव करना, सहज जीवन का, चलते फिरते, क्योंकि यहाँ के कण कण में तेरी याद आती है। तो आप जिधर जाएंगे, बाबा बाबा बाबा, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। और यहां भी अगर योग का अनुभव नहीं हो रहा, तो जरूर कोई बोझ लेकर के आए हैं। एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं, छोटी सी है, कहते हैं चींटियां एक चीनी के पहाड़ पर रहती थी और दूसरी नमक के पहाड़ पर रहती थी। तो एक दिन जो चीनी के शक्कर के पहाड़ पर थी, उसको आया कि बेचारी नमक के पहाड़ पर इतना कुछ खा पी नहीं सकती, उसको हम निमंत्रण दें, चीनी का स्वाद क्या होता है, उसका लेके जाओ। तो कहते उस चींटियों को निमंत्रण दिया चीनी के पहाड़ पर आने का, उसका स्वाद लेने का। तो आई, सारा दिन उनको सैर कराया कि कितना भी खाओ पियो, मौज करो चीनी का, आनंद लो। शाम को जब अनुभव पूछा कि भाई आपको चीनी कैसी लगी, तो बोले मेरे को तो कोई पता नहीं चला, कोई रस नहीं आया। बोला क्यों नहीं रस आया, क्या हुआ ऐसा, यहाँ तो हर पल में अनुभव हो रहे हैं हमको मिठास के। तो जब जांच की गई तो नमक वाली चीनी, नमक वाली जो पहाड़ी से आई थी चीटी, उसने अपने मुख में एक ढेला नमक का रखा हुआ था, उसको निकाला ही नहीं था, उसी का रस वो ले रही थी। तो इस पवित्र स्थान का आनंद लेने के लिए अगर कोई ऐसी नमक जैसी बात अंदर भरी हुई हो तो उसको पहले अर्पित कर देना, तब इसके अच्छे अनुभव आप सब कर सकेंगे, बहुत सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकेंगे। तो अगर कोई भी बोझ, कोई भी इस प्रकार की नेगेटिविटी, कोई ऐसी बातें मन में हो जो मन को खारा बना रही हो, क्यों कुछ पहाड़ से आए हैं इस पहाड़ पर, तो सभी उसको बाबा के हवाले करके बहुत हल्के बन जाओ, लाइट हो जाओ। तीसरी बात है आंतरिक खुशी की, क्योंकि खुशी एक ऐसी स्थूल वस्तुओं से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, साधनों से प्राप्त होने वाली नहीं है। आत्मा का निज स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, जो साधन सुविधाओं से, चीजों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपने आत्मिक स्वरूप का जितना आप अनुभव करेंगे उतना हल्के भी हो जाएंगे और आंतरिक आनंद की अनुभूति होगी, उस खुशी का अनुभव होगा जिसको हमारे शास्त्रों के अंदर अति इंद्रिय सुख के रूप में गाया हुआ है। इंद्रिय सुख खाने पीने घूमने बैठने बातें करने, इन सब से हम सबको प्राप्त हो जाता है, लेकिन अति इंद्रिय सुख केवल आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से मिलता है। जब आत्मा अपने निजी स्वरूप में स्थित हो जाती है और उसका सच्चा संबंध उस पिता के साथ जुट जाता है, इसलिए जैसे गोप गोपियों का अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है और उसमें दिखाया है कि वो भगवान के साथ श्री कृष्ण के रूप में माना है, डांस करती थी, खेल पाल करती थी, मनोरंजन करती थी, उसको इतनी ऊंचाई सी नजर से नहीं देखती थी कि भगवान है। कई बार बाबा कहते हैं, इस बार पिछली मुरली में बाबा ने इशारा किया था, ये कई बच्चे हैं जो उद्धव के रूप में भगवान को याद करते हैं और कई हैं जो गोप गोपियों के रूप में याद करते हैं। उद्धव के रूप में याद करने वाला ज्ञानी है, समझदार है, बहुत ज्ञान था उसके पास, पहचान भी यथार्थ थी ये भगवान है, और उस नजर से देखने के कारण वो बहुत सूखा था, उसके साथ वो मनोरंजन का अनुभव नहीं कर पाया, उसके साथ डांस नहीं कर पाया, लेकिन गोप गोपियों ने बहुत भावना में आकर के उसके साथ डांस किया, नाचे गाए खेले, बहुत चरित्र किए। तो बाबा भी हम सबको कहता है ये खुशी का जब तक अनुभव नहीं है तब तक योग सहज नहीं है, फिर मेहनत है। कई हैं ज्ञानी तो आत्माएं बाबा के बच्चे, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति धाम का निवासी हूँ, चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते कभी कभी अनुभव भी कर लेते हैं, लेकिन बोर हो जाते, थक जाते, थोड़े समय के बाद सोचते और क्या सोचना है, ये तो पूरा हो गया। और जिनको रमणीकता से बातें करना आता है तो घंटों घंटों बीत जाता है उसी रमणीकता में, रस में, बाबा आपने कितनी श्रेष्ठ जीवन मनाई है, क्या से क्या प्राप्ति कराई है, अथाह प्राप्तियां बाबा ने हम बच्चों को कराई है, संगम पर इतना ऊंचे खजाने दिए हैं, ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। चिंतन करो अगर, और उस चिंतन के साथ साथ उस खुशी की लहरों में लहराने लगो, तो मैं समझता हूँ योग कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत नहीं है। और चौथी बात एक ध्यान पर आती है, अगर ब्राह्मण जीवन में सर्व आत्माओं की दुआएं मिल रही हैं, सुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं, तो दुआएं बहुत सहज योगी बना देती हैं। एक प्रश्न मेरे पास आया था 2-3 दिन पहले, शायद आप लोग भी सुनते होंगे, अमूल्य रत्न पीस ऑफ माइंड में आता है, सुनते हैं माता है, पीस ऑफ माइंड में अमूल्य रत्न आता है, उसके प्रश्न आते हैं हमारे पास। तो उसमें एक प्रश्न आया कि आशीर्वाद और वरदान में अंतर क्या है। मुझे भी सोचना पड़ा इस पर थोड़ा सा। आशीर्वाद, दुआएं, हम सब एक दूसरे के साथ अगर संबंध संपर्क में आते, सहयोगी बन करके, स्नेही बन करके रहते हैं, सम्मान देते हैं, तो नेचुरल बड़ों की दुआएं रहती हैं, सदा आगे बढ़ते रहो, सदा स्वस्थ रहो, सदा उन्नति को प्राप्त करो, दुआएं तो सहज मिल जाती हैं। लेकिन वरदान लेने के लिए तो भक्ति में भी बहुत तपस्या करनी पड़ी, ऐसे भगवान सहज प्रसन्न नहीं हुए, ऐसे नहीं तथास्तु कह दिया, तप किया उन्होंने, मेहनत की। हम सब भी अगर बाबा की के वरदान प्राप्त करते रहें और अपने प्राप्त परिवार की दुआएं लेते रहें, सबकी दुआएं मिले, ऐसे श्रेष्ठ कर्म हो जो कोई भी भूल चूक की बद्दुआ न दे, सबकी दुआएं मिले। और जिस आत्मा को दुआएं मिलती हैं उसका हल्कापन और खुशी अपने आप बन जाती, नेचुरल हो जाती, उसको योग लगाने में मेहनत नहीं लगती। कभी कभी आपने देखा होगा कोई छोटे बच्चे होते हैं अपने आप खिलखिला के हंस देते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, एकदम जैसे डांस करने लगते हैं छोटे भाई, उनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, भाई जगत की बातों का कुछ पता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर लेटे लेटे भी खुशी में झूम रहे हैं। और कोई एकदम अचानक चिल्ला पड़ते हैं, रोने लगते हैं, क्यों? वो 5 जन्मों की किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का फल। आत्मा छोड़ के तो गई, संस्कार लेके गई, लेकिन जो हिसाब किताब थे वो अचानक चली गई, मान लो शरीर छोड़ के जन्म लिया, तो पिछले जन्मों में अगर उसने बहुत सुख दिया है, सहयोग दिया है, मदद की है आत्माओं को, वो याद करते हैं दिल से कितना अच्छा था, तो वहां पर उसको खुशी का अनुभव होता है, वहां पर वो एकदम नाचने लगता है। और अगर कोई ऐसे, अरे अच्छा है चला गया, कितना तकलीफ दिया, कितना परेशान किया, तो बेचारा चिल्लाने लगता है वहां। हम सभी भी सहज योगी जीवन के लिए इन 4 बातों पर ध्यान दें। एक तो मन बहुत स्वच्छ हो, अब किसी के लिए भी कोई कैसी भी आत्माएं हैं, हरेक का हिसाब किताब है, हरेक के संस्कार हैं, आदतें बनी हुई हैं, इसलिए अगर हम सब सबके संबंध संपर्क में आते हुए सबको निर्दोष दृष्टि से देखना सीख जाए, ड्रामा के अंदर इस कल्याणकारी ड्रामा में हर आत्मा का बहुत अच्छे से अच्छा पार्ट है, मुझे अपने पार्ट को अच्छे से अच्छा बजाना है, बाकी जो करेगा वो पाएगा। ये जब अंदर की निर्दोष भावनाएं बन जाती हैं, बहुत खुशनुमा मन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो स्वच्छ मन, हल्कापन, आंतरिक खुशी और सबकी दुआएं बहुत सहज योगी जीवन बना देती, सहज बाबा की याद बनी रहती, फिर निरंतर योग, सहज योग, कर्म योग, स्वतः योग, जिसके हम कई नाम देते हैं योग के, वो सहज हो जाता। और स्वच्छता में भी 4 बातें हमारे ध्यान पर आती हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन है और ब्राह्मण जीवन में अगर किसी भी प्रकार की अस्वच्छता है तो इस मन मंदिर में बाबा को बिठाना सहज नहीं है। वैसे भी कहा जाता है भगवान को अपने दिल में बसा लो, कई बार कहते हैं भक्ति में भी भावना रखी, भगवान तो सब जगह है मेरे दिल में भी है, लेकिन वो दिल में कब रहता है? अगर दिल में गंदगी है, अस्वच्छता है, तो कैसे वो रहेगा? इसलिए सबसे आवश्यक है पहली तन की स्वच्छता, और इसको इतना अच्छा स्वच्छ रखें, देह मन के वशीभूत होकर के इसका श्रृंगार करना वो स्वच्छता नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन चैतन्य मूर्ति में आत्मा जो इस तन में विराजमान हूं, किसकी प्रिय हूं? आत्मा बाबा की प्रिय मूर्ति इस तन के मंदिर में विराजमान है, इसलिए पुजारी लोग मंदिर की बहुत सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, और मंदिर की अगर स्वच्छता है, सफाई है, तो उस मंदिर में कभी कोई भूत प्रवेश नहीं कर सकते। भूत उसी स्थान पर प्रवेश होते हैं जो खंडहर होता है, गंदा होता है। उस भूत की बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ये विकारी विचारों के भूत अंदर घुस जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कई प्रकार की ऐसी नेगेटिविटी भूत के रूप में आत्माओं को परेशान करती। अगर तन मेरा स्वच्छ है, पवित्र है, कोई भी प्रकार की इसके अंदर बदबू गंदगी नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे नियम बाबा ने इस विद्यालय के बनाए हैं, जो हमारे रेगुलर विद्यार्थी हैं वो सब जानते हैं कि हमें इन वस्त्रों की भी कैसे सफाई रखनी है। लेट्रिन जाने के बाद उन वस्त्रों को हम टच भी नहीं करते, बहुत साफ स्वच्छ वस्त्र भी हों, खान पान भी बड़ा स्वच्छ हो, कोई भी इधर उधर की चीजें तन को नहीं दे सकते। जितना जिसने इस तन को स्वच्छ मंदिर के रूप में रखा है, उतना विकारी भूत इसमें प्रवेश नहीं करते, परमात्मा का वास हो सकता है। जब हम प्यार से बाबा कहेंगे तो बाबा हाजिर हो जाएगा। उसके पास कोई साधन ढूंढने की जरूरत नहीं है, बुलाओ और आपको कहे हमारे पास ये साधन हो तो हम आए, आप याद करो और हाजिर हो जाए। हाजिरा हजूर तो हम कहते ही हैं, लेकिन जहां सच्चाई है, सफाई है, वहां बाबा की हाजिरी सेकंड में हो जाती है। इसलिए तन की स्वच्छता, इस पर ध्यान देना, और साथ साथ मन की स्वच्छता, मन मना भाव, मन के अंदर कोई भी व्यर्थ और विकारी संकल्पों को अब स्थान नहीं देना है। अब तक भले दिया है, लेकिन इसकी स्वच्छता के लिए, मन मना भाव स्थिति के लिए हम सबको अच्छा चिंतन करना है, अच्छे विचारों में रमण करना है, अच्छा साहित्य पढ़ो, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति संग और साहित्य से होती है, जहां तक मैंने नोट किया है। आप सभी भी इस पर विचार करना, जिस संग में आप बैठेंगे, बच्चे जिस संग में चले जाते हैं, उस संग का रंग लगता है और उसी तरह की उसकी विचारधाराएं बन जाती हैं। अशराबी का संग कोई कर ले, आज कोई ऐसे व्यर्थ कर्म करने वालों का संग कर ले, उसके विचार वैसे ही धीरे धीरे परिवर्तित होते रहेंगे। एक दिन, दो दिन, चार दिन, छह दिन, भले अपने लौकिक परिवार के विचारों के आधार से पक्का भी रहे, लेकिन जिस संग में उसका उठना बैठना रोज रहता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे सत्य संग करो। सत्य एक बाबा को ही वैसे कहते, गॉड इज ट्रुथ। एक बाबा के संग में बुद्धि से रहो। संग ये भी आवश्यक है, संगठन जरूरी है, लेकिन जो पर चिंतन करते हैं, व्यर्थ चिंतन करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इस संग से अपनी संभाल करो, नहीं तो आपके मन में कुछ न कुछ गंदगी डाल देंगे। इधर उधर की बजाय आपको सुना करके, कानों में डाल करके, यहां ऐसे होता है, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, कई प्रकार की बातें मन में चली गई, तो ये मन शुद्ध नहीं हो सकता, स्वच्छ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी बातों के लिए बाबा कहता है, हियर नो इविल, ये सब इविल हैं, सुनना ही नहीं है, देखना सोचना बोलना भी नहीं है। अगर मन स्वच्छ है तो मन मना भव। और तीसरी स्वच्छता है दिल की। दो बातें हैं इसके अंदर। जब दिल की स्वच्छता कहते हैं तो स्वपुरुषार्थ में जिस प्रकार का मैंने लक्ष्य रखा है, थोड़ी गहरी बात सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। दिल की स्वच्छता किसको कहा जाता है? जिस प्रकार का लक्ष्य है, मान लो हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में हम जाते हैं, यहां मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई करते हैं, हमारा लक्ष्य ये है, तो क्या उस लक्ष्य के प्रमाण मेरे जीवन में वो लक्षण आते जा रहे हैं? तब कहेंगे दिल की स्वच्छता है। दिल के अंदर जो भावनाएं हैं उसी भावनाओं के प्रमाण हमारा स्वपुरुषार्थ है, और उसी भावनाओं के प्रमाण हमारी सच्चे दिल की सेवा है। जो सेवा हम कर रहे हैं उसमें स्वार्थ नहीं है, स्वयं के अर्थ नहीं है, विश्व कल्याण के लिए सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं, किसी के दिखावे के लिए, नाम मान शान के लिए नहीं कर रहे हैं। ये दिल की सफाई, दिल की सच्चाई बहुत जल्दी बाबा को खींच लेती अपने तरफ। कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी कर्म किए जाए, कोई भी सेवा की जाए, और उस सेवा के अंदर हमारी भावनाओं में कुछ स्वार्थ हो, मेरा मान हो, मेरा नाम हो, मुझे कोई पूछे, मुझे कोई जाने, बाबा कहते हैं वहां अस्वच्छता प्रवेश हो गई। किसी भी प्रकार का स्वार्थ रख करके सेवा न कीजिए, कोई भी पुरुषार्थ दिखावे वाला न हो, स्वयं की उन्नति मुझे करनी है, कोई मुझे कहे या न कहे। एक बात बहुत अच्छी है, कहते हैं जहां चाह है वहां राह निकल आती है। जैसे कहते हैं अगर चाहना है कि मुझे करना है तो कोई विघ्न रोकता नहीं है। एक वैसे भी स्लोगन है, जहां लगन है वहां विघ्न नहीं रहते। अगर कोई कहता है ये विघ्न है, ये विघ्न है, ये विघ्न है, माना उसके लगन में परिपक्वता नहीं है। लगन है तो फिर कोई विघ्न ठहरेगा ही नहीं, अपने आप सब रास्ते निकल आते हैं। लेकिन लगन को हम बढ़ाएं तो सभी देखना दिल की सच्चाई और सफाई कहां तक है। और चौथी है संबंध की सच्चाई सफाई। संबंध की स्वच्छता में संतुष्टता आती है। जिन आत्माओं के साथ हमारा संबंध संपर्क है, कितना मैं आत्मा संतुष्ट हूं और सबको संतुष्ट कर रही हूं। क्योंकि संतुष्टता योग का बहुत गहरा आधार बनता है। अगर संतुष्ट आत्मा नहीं है, योग नहीं लगेगा। संबंध संपर्क में आते हुए संतुष्टता का एक बहुत सुंदर स्लोगन बाबा ने दिया है, रिगार्ड देना ही रिगार्ड पाना है। हम सबको रिगार्ड दिल से देते चले, संतुष्ट हो जाएंगी आत्माएं। तो अगर इन सब बातों पर हमारा ध्यान है, स्वच्छता के ऊपर ध्यान है, हल्केपन पर ध्यान है, बहुत योग सहज है। जिस रूप से बाबा ने हम सबको सिखाया है कि बाप को याद करना क्या बड़ी बात, बच्चे आपके पिता को, बच्चा पिता को याद करने के लिए कोई माला लेता है, मूर्ति लेता है, आंख बंद करता है, क्या करता है वो? उसका अधिकारी है, वारिस है, जो कुछ उसके पास उसका वो मालिक है। हम सभी भी मालिक बन करके उनकी शक्तियों को ग्रहण करें और उसको यूज करें। कई बार हम योग लगाते हैं लेकिन योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। योग है, शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का अगर हमने यूज नहीं किया वो व्यर्थ चली जाएगी। अगर हमारा योग बाबा से यथार्थ है और सब शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही हैं, कनेक्ट हूं मैं, तो चेक करो क्या उन योग की यथार्थ विधियों की सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। सिद्धि हम कोई चमत्कार के रूप में स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते तो स्वीकार करोगे तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन योग की सिद्धियां क्या है? आत्मा जिसके लिए कहा गया है योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल और सुगंधित है। क्या ये सिद्धि योग से हम सबने प्राप्त की है? अगर मेरा यथार्थ योग बाबा के साथ है तो जो हमारी कर्म इंद्रियों के अंदर उत्तेजनाएं हैं, आवेग है, आवेश है, किसी भी प्रकार की चंचलता है, योग की सिद्धि ये है कि अगर हमारा बाबा के साथ सच्चा योग है तो एक एक इंद्रिय शीतल सुगंधित शांत उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी, संस्कारों में वो निर्मलता वो दिव्यता अपने आप आती जाएगी, चलन व्यवहार में दिखाई देगा कि इसने योग किया है, लक्षण दिखाई देंगे चेहरे से, चलन से, व्यवहार से, वो रॉयल्टी वो पर्सनैलिटी अपने आप अनुभव होगी। एक तरफ हम कहें हम योग करते हैं, अभी अभी योग करके गए, बाहर कोई बात आई एकदम गुस्से में आ गए, कुछ अपशब्द बोल दिए, जोश में आ गए, नहीं अगर बोले तो अंदर से लाल पीले एकदम तनाव में आ गए, योग की सिद्धि प्राप्त नहीं की है। हम सब पहले अपने संस्कारों को जीतने के लिए योग कर रहे हैं, ये चीजें मिल जाएं, हद की प्राप्तियां हो जाएं। कई लोग योग करते हैं कि हम बाबा को याद करते हैं, मकान अच्छा बन जाए, इस वीआईपी की सेवा करें, अच्छा सहयोगी बन जाए, इसको बाबा टच कर दे तो इतना पैसा यज्ञ में आ जाए। बाबा इस प्रकार का योग नहीं चाहता है, वो तो जिसको भी टच करेगा उससे पैसा सब कुछ करा देगा, लेकिन हम सबको वो सिद्धियां प्राप्त करनी है जो आत्मा अपनी संपूर्ण पावन स्टेज को प्राप्त कर ले, जो उसके अंदर इम्प्यूरिटी आई है जहां से भी आई है, वो इम्प्यूरिटी वो इम्प्योर संस्कार समाप्त हो जाए, बहुत सरल चित्त, नम्र चित्त, मिलनसार एकदम आत्मा एकदम दिव्यता की मूर्ति बन जाए। बाबा तो ऐसा बनाना चाहता है, नंबरवार बनते हैं, लेकिन प्रयोग करो योग की शक्तियों का, सबसे पहले अपने संस्कारों पर प्रयोग करना है। कोई भी ऐसा नेगेटिव संस्कार है जो आपको परेशान करता है, पता तो चलता है हर एक को, भले कोई दूसरे को पता चले या न चले, संस्कारों का प्रभाव स्वप्न और संकल्पों के रूप में अपने आप आता है। जो संस्कार पिछले हैं विकारी पतित कामी क्रोधी वाले, उन संस्कारों को भले हमने दबाया हुआ है अच्छे संग में अच्छे वातावरण में, लेकिन समाप्त नहीं कर पाए, कहीं न कहीं वो बार बार उछल के आ जाते बाहर। अगर योग यथार्थ है, सिद्धियां प्राप्त की हैं, तो वो संस्कार समाप्त होने चाहिए। देखना, चेक करना, 2 साल 4 साल 10 साल से जितने समय से हम ज्ञान में हैं, क्या सचमुच उस ज्ञान और योग के बल से, उन शक्तियों से आत्मा इतनी संपूर्ण पवित्र स्वच्छ निर्मल बनी है? बातें संसार की तो विपरीत दिशा में जा रही हैं, कलयुग है, लेकिन उस विपरीत दिशा में होते हुए भी हम बहुत ऊंचे मंजिल के राही हैं। बाबा हमें संपूर्ण सत्व प्रधान बना करके साथ ले जाना चाहते हैं, संपूर्ण पावन बना के ले जाना चाहते हैं। पहले अपने संस्कारों पर प्रयोग करें, फिर अपने संबंधों में जो रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारे संबंध हैं, कहीं न कहीं से हिसाब किताब निकल आते हैं, विघ्न रूप बनते हैं, हमारी ऊंची स्थिति बनाने में भी बहुत रुकावट डालते हैं। अब प्रयोग जैसे साइंटिस्ट कर रहे हैं, एकदम एकांत में चले जाते हैं, सब बातों को त्याग करके किनारा करके बैठ जाते हैं, प्रयोग करते हैं, रिसर्च जिसको कहते हैं, हम सभी भी कुछ समय एकांतवास में जाकर के बहुत स्थिर मन से अपने संकल्पों को, अपने स्वरूप को भी स्थिर करके बाबा की ऐसी करंट लो, कनेक्शन जुटते ही करंट आने लगेगी, लाइट आएगी, और उस लाइट का ऐसे प्रयोग करो। हम लोग आजकल योगिक खेती का एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सुना होगा शायद आप लोगों ने। हम कहते चलो आपके पास जमीन नहीं है, स्थान नहीं है, आपको खेती करने की बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आप दो चार गमले पर भी तो प्रयोग करके देखो, हमारे विचारों का प्रभाव प्रकृति कितनी जल्दी स्वीकार करती है। एक बहुत प्यार से पानी दो, स्नेह से देखो, उससे एक बार बात करके आ जाओ, और एक को बिल्कुल नहीं देखो, भले पानी दो लेकिन एक को प्यार करो और एक को एकदम बिल्कुल निग्लेक्ट कर दो। जैसे बच्चे को अगर आप एक को बहुत प्यार कर रहे हो, एक को नहीं देखते हो, तो भी रोना शुरू कर देता है। पेड़ पौधों पर भी हम अपने श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों का प्रयोग करके देख सकते हैं, और बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि हमारे संकल्पों का, हमारे वाइब्रेशन का प्रभाव कैसे पड़ता है। बहुत सारी माताएं बहुत भोलेपन से करती हैं और उनकी इतनी अच्छी रिजल्ट मिलती है। अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली गया था, और दिल्ली में जमीन उस मकान में कहीं इतनी नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा गार्डन बनाया था माता ने, गार्डन था। कहती भाई साहब गार्डन में चले ना, क्या रखा है वहां, कहा शायद ऐसे ही दिखाने के लिए ले जाएगी। एक छोटा सा इतना सा पौधा था नींबू का। कहती मैं इस पर रोज योग का प्रयोग करती हूँ, इतने सैकड़ों नींबू इसमें निकलते हैं, कभी खरीदा ही नहीं हमने, सबको पड़ोसियों को भी देती हूँ। उसने ऐसे कपड़ा ढक के रखा था, हटाया देखा इतने सारे नींबू लगे हुए थे। प्रयोग करती हूँ मैं, हमारे शुद्ध विचार, हमारी भावनाएं बहुत जल्दी प्रकृति, पेड़ पौधे स्वीकार करते हैं। अब कई प्रकार की ऐसी बीमारियां नहीं ठीक होती हैं, दवाइयों से नहीं ठीक होती हैं, डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पाते हैं। बाबा कहता प्रयोग करो अपने ऊपर, शुद्ध संकल्पों का प्रयोग करो। अगर स्थूल में भी कोई है तो आजकल आप लोगों ने सुना होगा बाबा के कमरे में पानी रख करके चार्ज करके एक घंटा दो घंटा उस पर योग करके फिर पीते हैं, अच्छी रिजल्ट मिल रही है, भावनाएं प्रभाव डाल रही हैं, असाध्य रोग भी कई बार ठीक हो जाते हैं। भावनाओं का प्रभाव है, प्रयोग है ये, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों का प्रयोग योग के द्वारा करके हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी आवश्यकता है वर्तमान समय। मान लो कई संबंध बहुत दूरी के बढ़ते जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई रोज रुकावट डालता है, बहुत शुभ भावना से, जो आज बाबा ने कहा मनसा सेवा के लिए शुभ भावना की शक्ति चाहिए, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति चाहिए, निर्दोष भावनाएं चाहिए। जब ऐसी मनसा शुद्ध श्रेष्ठ सबके प्रति सकारात्मक बन जाएगी, बहुत अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम सुन लेते हैं, आज की मुरली सुन ली, दो दिन के बाद वहीं की वहीं, फिर पूछो क्या कहा था बाबा ने, कहेंगे याद नहीं रहता। कई ऐसी बातें हैं जिनको हम बार बार रिवाइज करते हैं और वो जिस जो मिलता है उनको सुनाते हैं, लेकिन ऐसी अच्छी बातें जो बाबा की मुरलियों में हम सुनते हैं, इनको हम बार बार रिवाइज करें। याद करने की विधि तो यही है, नोट कर लो। मान लो उस समय नोट नहीं करते हो, जब बाद में अकेले में बैठते हो, वो बातें चार छह आठ नोट कर लिया डायरी में, याद करके बार बार सोच करके कि आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने कहा। मान लो नहीं याद आती हैं तो फिर से एक बार पढ़ लिया या सुन लिया। एक स्मृति स्वरूप आत्मा बन जाए, सब बातें जो बाबा ने विधियां बताई हैं वो समय पर याद आ जाएं। तीव्र पुरुषार्थ है क्या चीज, तीव्र पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ यही है कि समय पर वो शक्ति की याद आए, समय पर वो पॉइंट याद आ जाए जिसकी जरूरत है हमें। अब जरूरत है हमें इस माहौल में, मान लो सहन करने की, कोई कुछ बात कह रहा है और मुझे उस समय सहन करने की बात भूल जाती है, हम उसका सामना कर लेते हैं, टकराव पैदा हो जाता, शक्ति तो भी है एक, लेकिन किस समय किस शक्ति का प्रयोग करना है उसके बजाय दूसरी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। यथार्थ योग की यथार्थ टचिंग आना, ये योग का प्रयोग है। टचिंग आनी चाहिए, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, इस समय मुझे कौन से अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने चाहिए। हैं सब ज्ञान के इतने अस्त्र शस्त्र बाबा ने सब बच्चों को दिए हैं, है हरेक के पास, लेकिन वो समय पर याद नहीं आते। अगर कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाए और समय पर शस्त्र भूल जाए, होते हुए भी याद न हो, तो विजयी कैसे होगा। तो आप सब माया के राज्य में, दुनिया के बीच में रह रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, उसमें ज्ञान के योग के अस्त्र शस्त्र काम आने चाहिए, प्रयोग करने चाहिए। और जितना आप प्रयोग करेंगे उतना आपको लगेगा सचमुच बाबा ने कितना ऊंचा ज्ञान दिया है, कितना योग का बल है, जिस बल के कारण मैं आत्मा हर विकार पर, हर बुराई पर विजयी हूं। बाबा अपने बच्चों को संगम युग पर विजयी भव का वरदान देता है, विजयी भव। लेकिन विजयी भव के लिए विधियां हैं, ऐसे नहीं वरदान दे दिया हो जाएंगे, उन विधियों को अपनाना पड़ेगा। किन विधियों से हम विजयी रह सकते हैं, अगर कोई भी बात में निश्चय हिल गया, जो बाबा ने स्मृति दिलाई है कि आपने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, ये स्मृति निश्चय के रूप में हो कि मैंने ही प्राप्त की है और बाबा ने मुझसे कराई है, ये स्मृति स्वरूप में आती जाए, बार बार रिवाइज करो। ऐसे कभी नहीं दिल से कैसो के सोचो ये तो बहुत कड़ा संस्कार है, इस पर जीत पाना बहुत मुश्किल है, कई बार ऐसे सोच सोच करके अपने आप को भारी कर लेते हैं। अब बाबा ने जो हमें देखा, बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, वो जानता है कि इन बच्चों को मैंने कल्प कल्प विजय दिलाई है, ये मेरे विजयी बच्चे हैं। तो उस विजयी स्वरूप को देख करके हम सबको उस स्मृति के आधार से कि मैं ही विजयी बना हूं, विजयी बनूंगा, तो कोई भी विकार अगर कितने भी प्रबल रूप में हो, कितने भी बड़े रूप में हो, संस्कार समाप्त हो जाएंगे। निश्चय की विजय है। मैं हमेशा चार स्लोगन देता हूं स्मृति में रखना, जहां निश्चय है स्वयं में, बाबा में, ड्रामा में, ज्ञान में, परिवार में, वहां पर विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय बुद्धि विजयंती। दूसरा स्लोगन बाबा हमेशा कहता है, बच्चे बाबा से भी कुछ मांगना नहीं है, हिम्मते बच्चे तो मदद दे बाप, बाबा मदद करेगा, बाबा आशीर्वाद करेगा, हो जाएगा। बाबा कहता मैं करूंगा तो मुझे तो सब पर करना पड़ेगा, लेकिन जो हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाएगा, हजार गुना पदम गुना मदद बाबा देने के लिए बन जाएगा। इसलिए हिम्मतवान बनकर के रहना, हिम्मत कभी नहीं हार जाना। और तीसरा स्लोगन है, जहां दृढ़ता है, संकल्पों में दृढ़ता, हो जाएगा, कर लेंगे, कोशिश तो करते हैं, ये शब्द जो है ना ये कमजोरी के शब्द हैं। जहां संकल्पों में दृढ़ता है वहां सफलता होनी ही है, हुई पड़ी है। और चौथा, जहां लगन है वहां विघन नहीं रहते। लगन माना सच्चे दिल का प्यार, और ऐसा लगन लगे जो लगन में आत्मा मग्न हो जाए। जब बाबा के प्रति प्यार अंदर से मर्ज होता है, तो उस प्यार में आत्मा जब खो जाती है, तो ये कहते हैं लगन में मगन हो गई, फिर विघ्न नहीं ठहरते, कोई भी रुकावट आती नहीं, आएगी भी तो अपने आप पार हो जाएगी, देखेंगे ही नहीं। बातें बड़ी तब बनती हैं जब हम उनको सोच करके या वर्णन करके, अधिक सोच लेते हैं तो बहुत पहाड़ बन जाती है, वर्णन कर देते हैं तो बड़ा पहाड़ बन जाता है। इसलिए बाबा कहता कोई भी बड़ी बातें आ भी जाए, महारथी और प्यादे का एक ही अंतर बाबा ने सुनाया है, जो महारथी आत्माएं हो बड़े से बड़ी बात को छोटा बना देती है, रुई बना देते, और जो प्यादे हैं, कमजोर हैं, वो छोटी सी बात को सोच सोच करके बहुत बड़ा रूप दे देते। तो हम सब बाबा के बच्चे प्रयोग करें योग के। योग का यही बल है कि कोई बड़े से बड़ी बात आ जाए, मेरे लिए नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सहज पार हो जाएंगे। क्यों? साथी मेरा सर्वशक्तिमान समर्थ स्वयं भगवान है, उस निश्चय के आधार से विजय हुई पड़ी है। तो ये चारों स्लोगन अपने पास नोट करके रखना, और बहुत सहज योगी राजयोगी जीवन का अनुभव करना है। कर्म करते भी योग लगा रहे, ऐसे नहीं कर्म छोड़ करके योग कर रहे हैं। हमको बाबा ने कर्म सन्यासी नहीं बनाया, कर्म योगी बनाया है। हर कर्म की छुट्टी दी है, लेकिन कर्तापन का भान ना है, नहीं तो कर्तापन का भान बंधन बना देगा, कर्म बंधन की रस्सियां जकड़ देगा। कर्म करो और समर्पित कर दो बाबा को, बाबा आपने करा लिया, शुक्रिया आपका, मैंने किया, मैं करता हूं। इस मैंपन से जितना आत्मा मुक्त हो जाएगी उतना लाइट रहेगी, और लाइट रहेगी तो बाबा के साथ एकदम ऊपर जाएगी और कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी हम सब बाबा के साथ कनेक्ट होकर के बैठेंगे। आज इंटरनेशनल योग का भी दिन है, जी आप बोलने वाले हैं, हमने बोल दिया, क्लास तो करा लिया, अभी योग करेंगे ना, आप बोल लीजिए, फिर मैं योग करूंगा आधा घंटा आपके साथ, तो जरूर करूंगा।
आप जो योग के प्रयोगों की बात सुनी आपने, मैं समझती हूँ पूरा एक घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन थोड़े में सब कुछ मिल गया है ना? बहुत जैसे इसेंस मिल जाता है ना कोई चीज का, फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, और बस उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने की जरूरत होती है। तो अगर इन फॉर्मूलाज को नोट तो किया ही होगा, लेकिन रेगुलर और रिलीजियसली अगर हम इनको अप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज ही लाइफ स्किल्स हैं, स्पिरिचुअल लाइफ स्किल्स हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ करती रहेंगी। इसलिए इन फॉर्मूलाज को हम याद तो रखें, लेकिन उनको प्रैक्टिकल फॉलो करके, प्रैक्टिकल अप्लाई करके, एप्लीकेशंस में ला करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। बहुत बहुत थैंक्स, आभार, शब्द कम पड़ते हैं ना ऐसे बातों को शेयर करने के पश्चात, की इतनी सुंदर बातें दी हैं जो हमारा जीवन बहुत ऊंचा बना देते हैं, ऋषि मुनियों तपस्वियों से भी ऊंचा जीवन, बाप समान जो बाबा ने शब्द दिए हैं। आप योगिक खेती की बात कर रहे थे, ग्राम विकास जो हमारा विंग है, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है ये ग्राम विकास का, योगिक खेती का, अनेक स्थानों पर इसका प्रयोग हुआ है। मुझे भी इसका एक अनुभव है, बहुत लंबे हैं इसके अनुभव तो, लेकिन एक छोटा सा सुनाती हूँ। 2010 में मैं पालनपुर गई थी, वहाँ हमारे एक भाई ने योगिक खेती की गेहूं, उसकी 10 किलो गेहूं मुझे कहा, दीदी आप ये लेके जाओ बॉम्बे। उन दिनों में मैं वो गेहूं से वो जो ज्वारा उगाते हैं ना, वो उगाती थी वो। आज भी सेंटर पर वो गेहूं पड़ी है एज इट इज है, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी कैस्टर ऑयल, कुछ भी उसको लगाया नहीं है, उसको एक दाना भी उसका खराब हुआ नहीं है। तो ये वंडरफुल प्रयोग है, करने जैसी बातें हैं, ये सिर्फ कहने जैसी बातें नहीं है, और ये ज्ञान और योग के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमारी लाइफ को और इस दुनिया को पैराडाइज में कन्वर्ट कर देती हैं।